नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, पॉल हॉकेन की द इकोलॉजी ऑफ कॉमर्स रिवाइज एडिशन, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और व्यावसायिक जिम्मेदारी के संबंध पर केंद्रित एक प्रभावशाली गैरकथा पुस्तक है। मूल पुस्तक 1993 में आई थी और संशोधित संस्करण बदलती पर्यावरणीय चुनौतियों के संदर्भ में उसके तर्कों को फिर रखता है। हॉकेन का मुख्य प्रश्न सीधा है, क्या ऐसी वाणिज्य व्यवस्था संभव है जो पृथ्वी की जीवन समर्थक प्रणालियों को नष्ट करने के बजाय उन्हें बनाए और पुनर्जीवित करे। लेखक के अनुसार आधुनिक उद्योग उत्पादन की लागत में प्रदूषण, संसाधन क्षय और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को अक्सर शामिल नहीं करता, इसलिए बाजार का सामान्य लाभ वास्तविक सामाजिक और पारिस्थितिक लागतों को छिपा सकता है। पुस्तक केवल कंपनियों की आलोचना नहीं करती, यह व्यापार को परिवर्तन का निर्णायक माध्यम भी मानती है, क्योंकि डिजाइन, खरीद, उत्पादन और वितरण के अनेक फैसले व्यवसाय ही लेते हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को व्यापार के बाहर की बाधा मानने के बजाय उत्पादन और वितरण के मूल सिद्धांत के रूप में देखना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, व्यापार और पारिस्थितिकी के कथित टकराव को अस्वीकार करना। पुस्तक की केंद्रीय स्थापना यह है कि व्यापार और पारिस्थितिकी को दो विरोधी क्षेत्रों की तरह देखना ही गलत शुरुआती बिंदु है। आम नीति बहस में अक्सर रोजगार, लाभ और विकास को पर्यावरण के विरुद्ध रखा जाता है, मानो थोड़ी प्रकृति बचाने के लिए कुछ आर्थिक प्रगति छोड़नी पड़े। हॉकेन इस ढांचे को चुनौती देते हैं। उनका तर्क है कि हर अर्थव्यवस्था अंततः मिट्टी, जल, हवा, ऊर्जा, जैव विविधता और मानवीय समुदायों पर निर्भर है। अतः उन आधारों को क्षति पहुंचाने वाला व्यापार लंबे समय में आर्थिक रूप से भी अव्यवहार्य है। पुस्तक बताती है कि औद्योगिक व्यवस्था ने प्राकृतिक प्रणालियों को कच्चे माल के स्रोत और कचरा डालने की जगह मान लिया है। इस दृष्टि में प्रदूषण कोई अलग दुर्घटना नहीं, बल्कि उत्पादन प्रणाली का अनुमानित परिणाम बन जाता है। हॉकेन के लिए समाधान केवल कम नुकसान करना नहीं है, वे ऐसे वाणिज्य की कल्पना करते हैं जो प्रकृति के चक्रीय और पुनर्योजी ढंग से सीखे। इस विचार का व्यावहारिक अर्थ है कि कंपनी के निर्णयों को केवल बिक्री और लागत से नहीं, सामग्री के पूरे जीवन चक्र, ऊर्जा उपयोग, विषाक्तता और स्थानीय प्रभाव से भी परखा जाए। इसीलिए पुस्तक पर्यावरणीय प्रश्न को परोपकार या जनसंपर्क का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक डिजाइन का मूल प्रश्न बनाती है। दूसरा, वास्तविक लागतों को कीमतों और प्रोत्साहनों में शामिल करने की मांग हॉकेन की आर्थिक आलोचना का प्रमुख बिंदु बाह्य लागत है। जब कोई कंपनी ईंधन जलाती है, जहरीला अपशिष्ट छोड़ती है या किसी क्षेत्र की प्राकृतिक क्षमता घटाती है, तब उसका पूरा बोझ अक्सर कंपनी की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं होता। लागत समुदायों, भविष्य की पीढ़ियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों और पारिस्थितिक तंत्रों पर चली जाती है। ऐसी स्थिति में सस्ता उत्पाद वास्तव में सस्ता नहीं होता, बस उसकी कीमत अधूरी होती है। पुस्तक इस विकृति को सुधारने के लिए नीति और बाजार दोनों में बदलाव की जरूरत बताती है। हॉकेन हरित करो और राजस्व तटस्थ कर परिवर्तन जैसे उपायों पर चर्चा करते हैं। सिद्धांत यह है कि काम, आय या उपयोगी गतिविधि पर अपेक्षाकृत कम कर लगाया जाए, जबकि प्रदूषण, कार्बन उत्सर्जन और संसाधनों की बर्बादी पर अधिक शुल्क हो। इससे बाजार संकेत बदलेंगे और स्वच्छ विकल्पों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है। यह दृष्टिकोण केवल दंड देने की बात नहीं करता, इसका उद्देश्य नवाचार को उस दिशा में मोड़ना है जिसमें कंपनियां कम सामग्री, कम ऊर्जा और कम विषाक्त रसायनों के साथ उपयोगी वस्तुएं बनाएं। हालांकि ऐसे उपायों के लिए राजनीतिक सहमति, निष्पक्ष मापन और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय कठिन है। फिर भी पुस्तक स्पष्ट करती है कि जब तक कीमतें वास्तविक नुकसान नहीं दर्शाती, तब तक बाजार अपने आप टिकाऊ परिणाम नहीं देगा। तीसरा, पुनर्स्थापनात्मक अर्थव्यवस्था, दक्षता से आगे का लक्ष्य। द इकोलॉजी ऑफ कॉमर्स का सकारात्मक प्रस्ताव पुनर्स्थापनात्मक अर्थव्यवस्था है। इसका आशय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन केवल क्षति कम न करे, बल्कि प्राकृतिक और सामाजिक प्रणालियों की क्षमता को सुरक्षित रखने या बढ़ाने में योगदान दे। हॉकेन संसाधन दक्षता को उपयोगी आरंभ मानते हैं, क्योंकि कम ऊर्जा और कम सामग्री में अधिक उपयोगिता पैदा करना प्रदूषण तथा लागत दोनों घटा सकता है। लेकिन केवल दक्षता पर्याप्त नहीं है। यदि कुल उत्पादन और उपभोग लगातार बढ़ते रहें, तो प्रति इकाई बचत के बावजूद कुल संसाधन दबाव बढ़ सकता है। इसलिए पुस्तक का जोर उत्पादों, सामग्रियों और व्यावसायिक उद्देश्यों के पुनर्रचना पर है। प्रकृति में एक जीव का अपशिष्ट दूसरे जीव के लिए पोषण बन सकता है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था अक्सर उपयोग के बाद सामग्री को बेकार मानती है। इस अंतर से बंद चक्रों, पुन उपयोग, मरम्मत और सुरक्षित सामग्री के विचार निकलते हैं। हॉकिन विविधता और स्थानीय अनुकूलन को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि एक रूप विशाल प्रणालियां पर्यावरणीय तथा सामाजिक झटकों के प्रति कमजोर हो सकती हैं। पुनर्स्थापनात्मक अर्थव्यवस्था का मानक इसलिए केवल कम हानि नहीं, बल्कि यह प्रश्न है कि क्या कंपनी का संचालन उस जीवन तंत्र की दीर्घकालीन क्षमता के साथ संगत है जिस पर वह निर्भर करती है। चौथा, उत्पाद डिजाइन। जैव अनुकरण और सामग्री के पूरे जीवन चक्र की जिम्मेदारी। पुस्तक का एक व्यावहारिक योगदान यह आग्रह है कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी उत्पादन के अंत में कचरा संभालने से शुरू नहीं होनी चाहिए, उसे उत्पाद की कल्पना और डिजाइन के समय से जोड़ा जाना चाहिए। हॉकिन की सोच में जैव अनुकरण अर्थात प्रकृति की पुनर्योजी प्रक्रियाओं से सीखना एक उपयोगी दिशा है। प्राकृतिक तंत्र सीमित पदार्थ और ऊर्जा प्रवाह के भीतर काम करते हैं, विविधता बनाए रखते हैं और अपशिष्ट को किसी अन्य प्रक्रिया का संसाधन बना देते हैं। व्यवसाय इन सिद्धांतों को हूबहू नकल करके नहीं बल्कि डिजाइन के प्रश्न बदलकर अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, सामग्री कितनी सुरक्षित है, उसे अलग करना कितना आसान है, उत्पाद कितने समय तक उपयोगी रहेगा, मरम्मत संभव है या नहीं और उपयोग के बाद उसके घटक कहां जाएंगे। यह जीवन चक्र दृष्टि कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखला तक जिम्मेदारी देखने को बाध्य करती है। केवल अपने कारखाने की दक्षता बढ़ाना पर्याप्त नहीं, यदि कच्चा माल विनाशकारी ढंग से निकाला गया हो या उत्पाद अंत में विषाक्त कचरा बने। इस विचार में उपभोक्ता की भूमिका भी है, पर पुस्तक समस्या का भार केवल व्यक्तिगत खरीद पर नहीं डालती। डिजाइनर, निर्माता और विक्रेता के पास सामग्री तथा प्रणाली चुनने की अधिक शक्ति होती है, इसलिए पुस्तक टिकाऊ उपभोग को टिकाऊ औद्योगिक डिजाइन से जोड़ती है। अंत में, महत्वाकांक्षी कटौती लक्ष्यों के साथ व्यापार की परिवर्तनकारी भूमिका। संशोधित संस्करण में हॉकिन एक ऐसे परिवर्तन की जरूरत पर बल देते हैं जो छोटे सुधारों से आगे जाता है। पुस्तक के चर्चित दिशासूचक लक्ष्यों में ऊर्जा संबंधी कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कटौती और प्राकृतिक संसाधनों के कुल उपयोग में गहरी कमी शामिल है। इन लक्ष्यों का उद्देश्य केवल भविष्यवाणी करना नहीं बल्कि पैमाने का बोध कराना है। यदि समस्या उत्पादन और उपभोग की मूल संरचना में है तो कुछ प्रतिशत की दक्षता वृद्धि पर्याप्त उत्तर नहीं हो सकती। हॉकिन व्यापार को पर्यावरणीय संकट का बड़ा कारण मानते हुए भी उसे समाधान के केंद्र में रखते हैं। कंपनियां सामग्री खरीदती हैं, उत्पाद डिजाइन करती हैं, परिवहन चुनती हैं और उपभोक्ता अपेक्षाओं को आकार देती हैं। इसलिए उनकी क्षमता सरकार और व्यक्ति दोनों की क्षमता से अलग और व्यापक है। फिर भी पुस्तक व्यवसाय को अकेला नायक नहीं बनाती। कर नीति, नियम, संस्थागत प्रोत्साहन और नागरिक मांग आवश्यक है, क्योंकि जिम्मेदार कंपनी को ऐसे बाजार में नुकसान नहीं उठाना चाहिए जहां प्रदूषण फैलाने वाला प्रतिद्वंद्वी अपनी लागत दूसरों पर डाल सकता है। आलोचकों ने पुस्तक के स्वर को कभी कभी अत्यधिक निराशावादी और उसके राजनीतिक क्रियान्वयन को अपर्याप्त माना है। यह सीमा महत्वपूर्ण है, फिर भी इसकी शक्ति इसी स्पष्ट आग्रह में है कि स्वैच्छिक हरित छवि नहीं बल्कि मापने योग्य संरचनात्मक बदलाव जरूरी है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक व्यवसाय विद्यार्थियों, प्रबंधकों, डिजाइनरों, नीति निर्माताओं, उद्यमियों और पर्यावरण संबंधी आर्थिक प्रश्नों को समझना चाहने वाले पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसे पढ़ने का व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक टिकाऊपन को अलग विभाग, प्रमाण पत्र या विपणन दावे के रूप में देखने के बजाय सामग्री चयन, उत्पाद जीवन चक्र, आपूर्ति श्रृंखला, कर व्यवस्था और लागत निर्धारण से जुड़ी प्रबंधन समस्या की तरह समझ सकता है। बौद्धिक स्तर पर यह पुस्तक उस धारणा को चुनौती देती है कि पर्यावरणीय संरक्षण विकास का बाहरी प्रतिबंध है। हॉकिन दिखाते हैं कि पारिस्थितिक आधार को क्षति पहुंचाने वाली अर्थव्यवस्था अपने ही भविष्य के साधन कमजोर करती है। समान विषय की कई पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर लेखक का दोहरा दृष्टिकोण है। यह पर्यावरणीय संकट की तीखी आलोचना करती है पर व्यापार को केवल दोषी संस्था मानकर छोड़ नहीं देती। इसके बजाय यह बताती है कि डिजाइन, निवेश, कीमत और नीति के नियम बदलकर वाणिज्य को पुनर्स्थापनात्मक बनाया जा सकता है। पुस्तक के कुछ आंकड़े, उदाहरण और समय सीमाएं अपने मूल प्रकाशन काल की हैं, इसलिए इसे नवीनतम जलवायु विज्ञान या समकालीन नीति मार्गदर्शिका के स्थान पर नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी इसके मूल प्रश्न आज भी उपयोगी हैं। किसी उत्पाद की वास्तविक लागत कौन चुकाता है, अपशिष्ट किसके पास जाता है और लाभ किस प्राकृतिक पूंजी पर निर्भर है। इन्हीं प्रश्नों की वजह से द इकोलॉजी ऑफ कॉमर्स, टिकाऊ व्यवसाय, साहित्य में एक आधारभूत और विचारोत्तेजक कृति बनी रहती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं पॉल हॉकिन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।